नमस्कार आदाब दोस्तों, दुनिया गोल है और भूगोल के सवाल भी गोल गोल है, तो घबराने की क्या बात है जब मोबाइल वाणी के क्वेश्चन मार्क शाला आपके साथ है, जहां भूगोल विषय के विशेषज्ञ आपको देने वाले हैं नए अध्याय की नई सीख। चलिए सुनते हैं उन्हें।
मैं अविनाश कुमार प्लस टू वागड़ी में भूगोल का शिक्षक हूँ। आज मैं वायुमंडलीय दाब के विषय में मोबाइल वाणी के माध्यम से कुछ बात रखने जा रहा हूँ। वायुमंडल का पृथ्वी पर दबाव या दाब बहुत अधिक रहता है, लेकिन हम इसे महसूस नहीं कर सकते। इसी प्रकार मौसम और जलवायु के एक महत्वपूर्ण तत्व वायु दाब के परिवर्तनों को हम शायद ही कभी देख पाते हैं। फिर भी वायु दाब हमारे मौसम में परिवर्तन उत्पन्न करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह मौसम और जलवायु के अन्य कारकों के साथ भी और परिणाम के रूप में अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। तापमान में अंतर हवा के घनत्व में परिवर्तन लाता है, जिसके कारण वायु दाब में परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन हवा में क्षैतिज गति उत्पन्न करते हैं, जिसे हम पवन कहते हैं। पवन उष्मा और आर्द्रता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और इस प्रकार वृष्टि के होने में मदद करते हैं। इस प्रकार पवन तापमान तथा आर्द्रता दोनों को प्रभावित करते हैं। विभिन्न प्रकार की जलवायु और जलवायु प्रदेशों में भी वायु दाब और पवन की दशाएं विशिष्ट प्रकार की होती हैं। इसीलिए वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए हम एक महत्वपूर्ण सूचक मानते हैं। वायु दाब का मापन हम किस प्रकार करते हैं? इसके लिए एक यंत्र का विकास किया गया है, जिसे हम बैरोमीटर कहते हैं। इसके द्वारा हम वायु दाब किसी भी स्थान पर कितना है इसका मापन करते हैं। वायु दाब को परिभाषित हम इस प्रकार करते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल को हम वायु दाब कहते हैं। जलवायु वैज्ञानिकों द्वारा इसके मापन के लिए जो इकाई इस्तेमाल की है उसे मिलीबार कहते हैं। एक मिलीबार एक वर्ग सेंटीमीटर पर एक ग्राम भार के बल के बराबर होता है। मानचित्र पर वायुमंडल दाब के वितरण को समदाब रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। समदाब रेखाएं अन्य रेखाओं की तरह ही काल्पनिक रेखाएं हैं, जिसे पृथ्वी पर नहीं नक्शे पर सुविधा के लिए ज्ञान के लिए बनाया गया है। पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडलीय दाब का वितरण एक समान नहीं है, इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार की भिन्नताएं मिलती हैं। ऊर्ध्वाधर वितरण गैसों का मिश्रण होने के कारण हवा दबाव से संकुचित होने की क्षमता रखती है, इसलिए इसका घनत्व निचली परतों में अधिक होती है या सर्वाधिक होती है, क्योंकि यह ऊपर की हवा के भार से दबी रहती है। इसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल की निचली परतों की हवा के घनत्व और दाब दोनों अधिक होते हैं। इसके विपरीत ऊपरी परतों की हवा कम दबी हुई होती है, अतः उनके घनत्व और दाब दोनों कम होती है। ऊंचाई के साथ हवा का दाब हमेशा घटता जाता है, लेकिन उनके घटने की दर हमेशा एक समान नहीं होती है। यह हवा के घनत्व, तापमान, जलवाष्प की मात्रा तथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर निर्भर करते हैं। ये सभी कारक परिवर्तनशील हैं, इसलिए ऊंचाई और वायु दाब के बीच कोई सीधा आनुपातिक संबंध नहीं होता। फिर भी यह कहा जा सकता है कि क्षोभ मंडल में वायु दाब घटने की औसत दर 300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 34 मिलीबार है। अब आते हैं दूसरे पर, क्षैतिज वितरण। वायुमंडलीय दाब के अक्षांशीय वितरण को वायु दाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता इसका क्षेत्रीय चरित्र है, जिसके कारण वायु दाब कटिबंधों का निर्माण होता है। पृथ्वी के धरातल पर चार प्रमुख वायु दाब कटिबंध हैं। ये निम्नलिखित हैं: विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब कटिबंध, दूसरा उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंध, तीसरा उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब कटिबंध तथा चौथा ध्रुवीय उच्च वायु दाब कटिबंध। इनमें से भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब कटिबंध को छोड़कर अन्य तीनों कटिबंध उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में अनुरूप जोड़े बनाते हैं। विषुवतीय प्रदेशों में अधिक गर्मी के कारण हवा अत्यधिक गर्म होकर ऊपर उठती है, इससे विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध का निर्माण होता है जो विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण के अक्षांशों तक विस्तृत है। विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की विशेषताएं अत्यधिक निम्न वायुदाब और शांत वायुमंडलीय दशाएं हैं। सामान्यतः धरातलीय क्षैतिज पवन यहाँ नहीं चलते क्योंकि इस कटिबंध की ओर आने वाली पवन इसकी सीमाओं के समीप पहुँचते ही गर्म होकर ऊपर उठने लगते हैं। इस प्रकार इस कटिबंध में केवल ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं ही पाई जाती हैं। वायुमंडलीय दशा के अत्यधिक शांत होने के कारण ही इस कटिबंध को डोलड्रम या शांत कटिबंध कहते हैं। न्यूनतम तापमान ध्रुवों के ऊपर पाया जाता है जिसके कारण वायुमंडल की ठंडी और भारी हवा उस क्षेत्र में नीचे उतरती है और ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध का निर्माण करती है। यह कटिबंध दोनों ध्रुवों के चारों ओर बहुत कम क्षेत्रफल में ही सीमित है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब और विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों के बीच उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध स्थित हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा से क्रमशः लगभग 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों तक विस्तृत है। इसका निर्माण वायुमंडलीय हवा के ठंडी होकर नीचे उतरने और जमा होने के कारण होता है। इसकी जानकारी आप आगे वाणी के द्वारा बताई जाएगी। नीचे उतरती हुई वायु धाराएं निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर बहते हुए पवनों में मिल जाती हैं। अत्यधिक क्षीण और परिवर्तनशील पवनों के कारण इस उच्च दाब कटिबंध में, जिसे घोड़े का अक्षांश भी कहते हैं, वायुमंडल बहुत ही शांत रहता है। पुराने जमाने में घोड़ों को ले जाने वाली नौकाओं को शांत वायुमंडलीय दशा के कारण इस अक्षांशों में बहुत कठिनाई होती थी। ऐसी परिस्थिति में वे अपनी नौकाओं का भार हल्का करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, इसलिए इस कटिबंध का नाम यह पड़ा। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है। उपोष्ण कटिबंधों तथा ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली वायु क्रमशः 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश तक आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों के मध्य परस्पर टकराती हैं तथा ऊपर उठ जाती हैं। इन दो विपरीत दिशाओं से आने वाली हवाओं के तापमान में अधिक अंतर के कारण इस कटिबंध में चक्रवाती आंधियां या निम्न वायुदाब उत्पन्न होते हैं। उच्च और निम्न वायुदाब यंत्रों के निर्माण में वायुदाब अंतर के दो मुख्य कारण हैं। पहला है तापीय, जिसे अंग्रेजी में थर्मल, दूसरा है गतिक, जिसको अंग्रेजी में डायनेमिक। तापीय शेष अगले दिन विस्तार से इस विषय में चर्चा करेंगे, और इसलिए धन्यवाद।
तो दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाएं नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।